देखिए तराना साहिबा, मैं जिद्दी आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, यानी मेरा रवैया मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी से चिपक जाऊँ।
जी मैं जानती हूँ, हम लोगों की आशनाएं आशिकी तो नहीं।
आज मैं साफ साफ अल्फाज में आपसे बात करना चाहता हूँ, हो सकता है कि न जाए।
नहीं।
क्यों?
क्योंकि मैंने बस यूं ही फैसला नहीं कर लिया है, मेरे पास अपने काम की मजबूत दलील है।
इसके अलावा क्या दलील हो सकती है कि मुझे सजा देना चाहते हैं या जिद कर रही हैं?
यानी मैं वाकई इतनी ही बेअकल हूँ?
नहीं नहीं, मेरी मुराद ये है कि
मैंने शादी ना करने और ज़वाज़ ज़िंदगी ना गुजारने का फैसला कर लिया है। मेरे जैसे इंसान के लिए बेहतर यही है कि वो काम से अपना वक्त पूरा करे।
जी हाँ, मुश्किलात से फरार करने का सादा तरीन रास्ता।
जी हाँ, जाहिर है मैं सादा रास्ते को तरजीह देती हूँ, सख्त राह को नहीं।
क्या आपको मालूम है कि किस तरह के इंसान हमेशा आसान राह इख्तियार करते हैं?
जी, कमजोर इंसान।
तो क्या आपने पक्का फैसला कर लिया है?
जी हाँ, आपके वालदा से बात की है, वो भी सोच रही थी कि ये फैसला उजलत में किया गया है, क्योंकि वो जानती हैं उजलत में किए जाने वाले फैसलों का क्या नतीजा निकलता है। उन्हें मेरी बात
क्यों इस कदर मेरे ऊपर फिक्र कस रही हैं? अब आपका मसला ये है कि मेरी वालदा उजलत या जल्दी में काम करने
जी
वाली
नहीं,
क्यों
है? मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कस रही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाजिया साहिबा उम्र के इस मरहले पर पहुँच चुकी हैं कि उनको समझना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने उनमें कुछ चीज़ें देखी हैं जिनका मुझे यकीन नहीं होता।
मैं नहीं समझ पाया, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया।
मैं क्या बताऊँ, अपने घर में ना ही साहिबा को इस तरह से देखभाल कर रही हैं कि गोया उनकी बहुत करीबी अजीज हैं, मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकी।
नाहिद?
नाहिद साहिबा,
मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं, खुद को इतनी तकलीफ ना दो, तुम्हारे चेहरे का रंग सफेद हो गया है।
नहीं मैं ठीक हूं।
उठो उठो, ऊपर चलते हैं, अगर हाजिया खानम को मालूम हो गया कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई तो बहुत नाराज हो जाएंगी।
मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तन्हाई में दिल घबराता है।
इस्माइल साहब का फोन है, मुझसे क्या काम है उन्हें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब। मलीहा साहिबा ने कहा था कि उनको कुछ काम है तो वो चली गई थी, अलबत्ता उनकी मेहमान मेरे पास है। जी हाँ नाहिद साहिबा। अच्छा ठीक है, कितना बदअखलाक है।
क्या कह रहे थे?
नहीं मालूम, वो बहुत बुरे अंदाज में बोल रहे थे। छोड़ो बताओ, शायद ऑफिस में किसी का झगड़ा हो गया होगा, उनको परेशान होगा। तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो?
मुझे जाना चाहिए।
वो नीचे थे, ऊपर आ रहे हैं।
क्या?
मुझको लगता है उनको आपसे काम है। क्या हो गया?
सना,
अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा रंग क्यों फक है?
समीरा साहब, आप एक मेहरबानी करेंगी?
जी फरमाइए।
आप अपने कमरे में चली जाइए, मैं इन खातून से बात करना चाहता हूँ।
जी अच्छा।
मोहतरमा, आपको मालूम है कि आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया है? हम लोग काशान आए थे आपसे बात करके इस मसले को वाजे करने के लिए, लेकिन आपने हम पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा आपने जो किया है उसकी वजह से हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते, लेकिन लगता है इस कहानी के और भी हिस्से हैं, है ना?
मेरी तबीयत खराब थी, मुझे नहीं मालूम था क्या करूं।
अब तो मालूम हो चुका है ना, यहाँ क्यों आई हैं आप?
मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, आपकी वालदा लेके आई।
बहाने ना बनाएं मोहतरमा, आप खूब जानती हैं मैं क्या कह रहा हूँ।
इस्माइल साहब, मैं वैसी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं।
आप किस तरह की हैं, किस तरह की नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन लगता है कि जब भी मौका मिलता है हमारी जिंदगी में जरूर मुदाखलत करती हैं।
मुर्तजा की कसम।
क्या 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 क्या? अपनी जबान से बाबा का नाम ना लो।
इस्माइल साहब, आपके वालिद मेरे शोहर थे, शरी और कानूनी लिहाज से मुझसे इस तरह बात ना करें।
अच्छा, शाबाश। जानती है अगर कोई दूसरा होता तो इससे बहुत बुरा बर्ताव करता। तुम्हारा फैसला अभी मैं कर देता हूँ। मेरी माँ को इस वाकये से बहुत ज्यादा सदमा पहुँचा है, उन्हें सब कुछ भुलाकर दोबारा जिंदगी शुरू करनी होगी, और जब तक आप यहाँ हैं ये नहीं हो सकता।
इंसान जब गोसफन जिबा करते हैं तो उसे भी वक्त देते हैं। मैंने तुम्हारे बाबा का खून तो नहीं बहाया, तुम्हें बताती हूँ जख्मी दिल पे क्या गुजर रही है।
आपके दिल पर क्या गुजर रही है मुझसे कोई वास्ता नहीं। मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ रहने से हमारी जिंदगी में सब कुछ नाबूद हो जाएगा।
तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में क्या मालूम है? तुम्हें मेरी कौन सी मुसीबत पता है?
मुझसे कोई मतलब नहीं है कि तुम पर क्या गुजर रही है। अपना सामान जमा करो, निकलो।
इस्माइल साहब, खुदा के लिए यहाँ शोर ना मचाइए।
आप इस औरत को नहीं जानती, मेहरबानी करके मुदाखलत न करें।
मैं मलिहा साहिबा को जानती हूँ, उन्होंने उन्हें मेरे सपोर्ट किया है। जब तक वो नहीं आ जाती हैं, मैं इनको यहीं पर रखूंगी। इस्माइल साहब, आप ऊपर तशरीफ ले जाइए।
हाँ बेटी समीरा, सलाम अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। तुमने किस वजह से ये काम किया?
मैंने किस वजह से ये काम किया? सारी चीजें तो तराना से मुझे मालूम हुई।
कुछ न कहो आप। तुमने एक बेकसूर लाचार औरत से बदजबानी की है? क्या मकसद है तुम्हारा? मैं जिस कदर इज्जत बचाना चाहती हूँ कि किसी को पता ना चले तुमने समीरा के घर जाकर उस खातून से बहस की।
किसी ने कुछ नहीं समझा।
नहीं समझा यानी शक भी नहीं किया? लोगों ने क्या सोचा होगा कि तुम उस खातून के साथ क्यों बहस कर रहे हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ?
अम्मी, मैं गुस्से में था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। अब रहने दीजिए।
तुम खामखां गुस्से में आ गए थे। तुम्हें क्या हक पहुँचता है कि किसी मेहमान को घर से निकालने की बात करो?
ये मेहमान है, ये मुसीबत है।
अब जो भी है, तुम्हारी आवाज में सुनना नहीं चाहती, समझ गए तुम?
हमारे सर पे जो मुसीबत आई इस औरत की वजह से, आपने जो कुछ झेला, जितना आंसू बहाया, हम लोग काशान तक गए, उसके घर गए, उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला।
तो क्या हुआ? क्या सोचते हो, मैं ये बातें नहीं समझती? क्या तुम मेरे बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो?
अम्मी,
मेहमान अगर दुश्मन भी हो तो फिर भी मेहमान होता है।
मैंने ये काम आपके लिए किया,
यानी मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना?
मुझे सिर्फ आपकी फिक्र थी।
तुम मेरी फिक्र ना करो, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी जिंदगी की फिक्र करो, सिर्फ।
जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।
चले गए। परेशान न हो, इस्माइल साहब चले गए। कहाँ जा रही हो?
वो सही तो कह रहा था, मैं कब तक उनके बड़ेपन से गलत फायदा उठाती रहूंगी? मैं तो जानती हूँ वाली साहबा के दिल पे क्या गुजर रही है, मुझे उनके जख्मों पे नमक नहीं छड़कना चाहिए।
अरे तुमने जो भी किया हो, जब मलिहा साहिबा तुम्हें यहाँ पर लेके आई तो इसका यही मतलब हुआ कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है ना?
नहीं किया है, मजबूरन मुझे रखा है, वो सोचती उन पे मेरा हक है, वरना मैं जानती हूँ दिल से वो मुझे लान तान कर रही है।
चलो ऊपर।
मैं जा रही हूँ, यहाँ ठहरना लड़ाई झगड़े का सबब है।
तुम अपनी मर्जी से नहीं आई थी कि अपनी मर्जी से जाओगी? तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें काशान ले चलूंगी और तुम्हारी नानी को उनकी अमानत सौंप दूंगी।
सलाम वालेकुम। ऊपर नहीं चलेंगी?
वालेकुम सलाम, थोड़ा सा काम है, बैगन का सालन बनाया है, मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए ले आई।
आपने ये खाना मेरे लिए पकाया है ना?
सालन तो बहाना है ना, मैंने तुम्हें डांट दिया था बेटा, मुझे माफ कर दो।
आप मुझे कुछ भी कह लें, मैं जानता हूं आपके दिल में क्या है।
लेकिन तुम्हारा काम भी सही नहीं था और मेरा ये रवैया भी ठीक नहीं था।
जब मैंने तराना से सुना कि वो औरत हमारे घर में है तो मुझसे रहा ना गया, अचानक गुस्से में आ गया।
जानती हूं गुस्सा शैतान की मीरास है और शैतान आग से बना है। इसके बाद जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो फौरन वजू कर लेना, आग पर पानी का काम करता है।
समीरा को मालूम हो गया क्या?
सही नहीं मालूम,
वो खातून कब तक हमारे घर में रहेंगी?
जब तक ठीक नहीं हो जाती। जानते हो उसका बच्चा मर गया है?
क्या?
जच्चगी के वक्त उसका बच्चा मर गया, इस्माइल ना ही दाग दीदा है, उन्होंने हमारे यहाँ पनाह ली है। मुझे उनके माजी से कोई काम नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना, मैं अपने घर का दरवाजा दुश्मन पे भी बंद नहीं कर सकती।
मुझे ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए था, माफ कीजिएगा। हालात से हमें वाकिफ करती रहिएगा, बेखबर इंसान अजनबी सा लगता है।
ठीक है बेटा।
बेहतर।
ये लीजिए।
इन बरसों में मैंने नमाज में हुजूर कल्ब के बारे में आवाम को काफी वाज़ो नसीहत की है, लेकिन आज रात मैंने जितनी भी कोशिश की कुछ भी मेरे काम नहीं आया। इससे पहले जब मैंने नमाज में हुजूर कल्ब खोया था, वो वक्त था जब डॉक्टरों ने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी सूरत में मां नहीं बन सकती। उन्होंने क्या मेरे मां न बनने का सबब तुम्हें बताया था?
बीदमिश का अर्क आपको सुकून देगा।
मुझे अपना आपको समझाना होगा।
मेरे बचपने ही में मेरी वालिदा फोत हो गई।
खुदा मग़फ़िरत करे।
मेरी नानी नमाज पढ़ते हुए रोती और उसके बाद दोबारा से नमाज पढ़ती। मैं उनसे पूछती, नानी अम्मा आप नमाज दोबारा क्यों पढ़ रही हैं? तो वो कहती, अगर इंसान अपनी नमाज में गैर खुदा के लिए गिरिया करे तो उसकी नमाज बातिल है। कुछ अरसा गुजरा, नमाज में वो रोती थी लेकिन उसका इयादा नहीं करती। उस वक्त मैं समझी के जब भी वो नमाज में गिरिया करती हैं तो खुदा के लिए।
तो ये बीदमिश का रग भी मुर्तजा साहब का शान से लाए थे?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सलाम। वालेकुम सलाम।
क्या कोई परेशानी है?
नहीं, मैं मुर्तजा साहब का कोई सामान खैराती इदारे में देना चाहती हूँ। घर में रहेगा तो खराब हो जाएगा, इस तरह मुस्तहक तक भी पहुँच जाएगा और लोग उन पर फातिहा भी पढ़ देंगे। समीरा बेटी, मैं वहीं जा रही हूँ अपनी क्लास में, दोपहर के खाने पर नहीं आऊँगी, मेरा इंतज़ार ना करना।
जी अच्छा। पता नहीं कैसे मलिहा साहिबा ने मुर्तजा साहब का सारा सामान खैरात में दे दिया जिससे इतनी यादें जुड़ी हुई हैं।
शायद उनके लिए तमाम यादों के साथ जीना मुश्किल होगा
और शायद उनके दरमियान की मोहब्बत को आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप और मुर्तजा साहब के दरमियान معاف کیجئے، میں تجسس نہیں کرتی ہوں، لیکن میں جب کمرے میں تھی تو میں نے اسماعیل صاحب کی آواز سن لی تھی. مجھے نہیں لگتا صرف بچہ ہے، ان کے درمیان کی پریشانی تھی.
خدا حافظ.
او میں نے سب کچھ خراب کر دیا. ناہید، میں نے سب خراب کر دیا، تباہ کر دیا.
کوئی بات نہیں، وہ تمہاری بات دل پہ نہیں لیں گی.
کیا یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی میرے پیٹ پیچھے بات کرے تو میں آخر عمر تک اس کے دشمن بن جاتی ہوں.
وہ میری اور تمہاری طرح نہیں ہے، وہ قوی ہے.
ان باتوں میں قوی اور ضعیف نہیں ہوتا ہے، ہم سب عورت ہیں.
ملیہ صاحبہ مختلف ہیں، اگرچہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے لیکن وہ میرے ساتھ بڑی بہن کی طرح پیش آ رہی ہیں.
آپ کا اور میرا معاملہ الگ ہے. ملیہ صاحبہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور میں کیا کر بیٹھی، میں نے یہ کون سی بے وقوفی کر دی.
پریشان نہیں ہو،
لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر کوئی کسی کو سچ میں چاہتا تو وہ بچے کے خاطر بھی دوسری شادی نہیں کرتا ہے.
میں بچہ چاہتی تھی.
یعنی ملیہ صاحب اور مرتضی صاحب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی تو تھی جو انہوں نے دوسری شادی کی ہے نا؟
جی نہیں، آپ مرتضی صاحبہ کو نہیں پہچانتی. جو چیز اس مرد کے دل میں نہیں تھی وہ حوس تھی، انہوں نے مجھے میری آرزو تک پہنچایا.
دیکھو، میں مرتضی صاحب کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن انسان کسی اور کو اپنے آرزو تک پہنچانے کے لیے اپنی بیوی جس نے اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ رہا اس کو چھپاتا تھوڑی ہے کچھ.
مرتضیٰ کربلا سے واپس آنے کے بعد ملیہ صاحبہ کو سب کچھ بتانا چاہتے تھے، لیکن وہ بہت پریشان تھے ملیہ صاحبہ کی تنہائی کے لیے، اسی وجہ سے وہ آپ لوگوں کو یہاں لے کر آئے.
کیا؟
وہ چاہتے تھے جب ملیہ صاحبہ سب کچھ جان گئی تو وہ ہفتے میں 5 دن تہران میں رہیں گے اور 2 دن کرج میں گزاریں گے. انہوں نے اسماعیل صاحب سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ یہاں منتقل ہو جائیں، لیکن اسماعیل منتقل نہیں ہوئے. وہ کہتے تھے یہاں پر تلخ یادیں ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کو لائے.
تم نے ملیہ صاحب کو یہ باتیں بتائی ہیں؟
نہیں.
ہائے اللہ، وہ کس قدر ناراض ہوں گی اگر یہ سنیں گی تو. میں تو ان سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتی.
ان کو آپ سے کوئی کام نہیں ہے.
جانتی ہوں کچھ نہیں بدلے گا، لیکن جب ہی وہ مجھے دیکھیں گی تو ان کو یاد آ جائے گا کہ مرتضی صاحب نے ہم لوگ کو کیوں لے کے آئے یہاں پر. اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا سوچتی؟
ارے ملیہ،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیا ہوا؟
پہلے مجھے تحفہ دیں.
ارے بتاؤ تو، یہ کون سی خوشخبری دینا چاہتی ہو جس کی وجہ سے یہاں آئی ہو؟ خدا کا شکر،
امتحان کا نتیجہ میں پاس ہو گئی ہوں.
مبارک ہو.
آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟
کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوئی.
تو پھر کیا بات ہے؟
اصل میں میں نے سوچا تم پریگنینسی ٹیسٹ لے کر آئی ہو.
ابھی ماں باپ بننے کے لیے بہت وقت ہے مرتضی صاحب. آج رات کا کھانا آپ کھلائیں گے مجھے.
السلام علیکم حاجی صاحبہ.
وعلیکم السلام.
کچھ ہو گیا ہے کیا؟
کچھ نہیں کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں.
آپ آدھے گھنٹے سے گاڑی بیٹھی ہوئی ہیں اس گرم موسم میں.
हाँ ठीक कह रहे हैं आप, गर्मी बहुत ज्यादा है।
अगर कुछ है तो मैं खिदमत में हाजिर हूँ आपकी।
बहुत शुक्रिया अजीम साहब, शुक्रिया,
कोई बात नहीं।
अगर आप ना हो हाजिया साहिबा तो हमारे सब काम रुक जाएंगे।
मैं क्या कर सकती हूँ भाई?
बात यह है कि हमारे अक्सर मदुईन आपको पहचानते हैं, आपकी क्लास में शिरकत की है, आपकी बात भी मानते हैं, आपकी शिरकत भी स्टारों को एतबार देगी और हमारे मदुईन को काम करने का जोश दिलाएगी। अब आप मेहरबानी करके 15 मिनट तकरीर भी करें तो नूर आला नूर हो जाएगा।
आप मुबालगा कर रही हैं शमसियान साहिबा, कौन मुझे जानता है?
आप इनके सारे से काम लेती हैं हाजिया साहिबा।
इन स्टालों पे क्या फरोख्त करेंगी?
खवातीन पर मुनहसर है, जो भी वो बनाएंगी यहाँ फरोख्त किया जाएगा।
बहुत अच्छी बात,
मुझे इजाज़त है कि दावत नामों में आपका नाम लिख दूँ?
आज तक कभी आपने कुछ मांगा और मैंने इनकार किया हो, ये हुआ है? ज़रूर ऐसा करूँगी।
इंशाल्लाह इस काम का अजर मरहूम मुर्तज़ा साहब को पहुँचेगा।
बहुत खुशी हुई मुझे।
अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
तुम मेरी सारा को लेके नहीं आई अच्छी लड़की, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हमारे पास तो आती नहीं हो, आज जब आई तो बच्ची को लेके नहीं आई।
जी नहीं हाजिया साहिबा, जब हम आ रहे थे तो मैंने मरियम से कहा था कि मैं इस कदर शर्मिंदा हूँ कि आपसे आंखें नहीं मिला सकती। कसम खुदा की दुकान का काम इस कदर बढ़ गया है कि मैं सिर्फ 1-2 घंटे ही सारा को देख पाती हूँ।
अली बेटा कैसा है, अभी तक अपने चचा के पास है?
जी हाँ।
चलो कोई बात नहीं, तुमने तो इससे ज्यादा सख्त दिन गुजारे हैं। इस्माइल ने कहा था कि मकसूदी साहब के साथ भी अच्छी बन रही है। तुम खुद राजी हो अपने काम से, अपनी दुकान से?
जी हाँ खुदा का शुक्र है,
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रही थी कहीं कोई बुरा वाकया पेश ना आया हो।
जी नहीं कोई बात नहीं हुई है। मैं इस वक्त मरियम के काम से हाजिर हुई हूँ। मरियम को तो जानती है ना आप, देवरानी है मेरी।
हाँ बहराम साहब की अहलिया हैं।
सच तो ये है कि मरियम को कोई काम चाहिए। आप बेहतर जानती हैं कि अकेली औरत को अच्छा काम कितनी मुश्किल से मिलता है। मैंने इनसे कहा कि चलो हाजिया खानम के पास चलते हैं, शायद आप इनकी कुछ मदद कर सकें।
दरअसल मरियम साहिबा हमारी मदद वाली शरायत पर पूरी नहीं उतरती, उन पर अपने घर आने के खर्च की जिम्मेदारी नहीं है।
हाजिया साहिबा बहराम से मेरा झगड़ा हो गया है, मैं कई दिनों से अपने वालिदैन के घर में रह रही हूँ, मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा खुद ही उठाती हूँ।
अफसोस की बात है, आप किस वजह से बहराम साहब से लड़ पड़ी?
बहराम का दिल अपने बीवी बच्चों में नहीं लगता, यानी जब से बहमन साहब का इंतकाल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाभी और उसके बच्चों में लगे हुए हैं। भाभी माफ कीजिएगा मैं इसे साफ साफ बात कर रही हूँ, वो जिस कदर इन लोगों को चाहते हैं हम लोगों को नहीं चाहते।
बहरहाल आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था, मियाँ बीवी को इन मौकों पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपको चाहिए था कि आप बहराम साहब को उनकी गलती की तरफ मुतवज्जे करती।
मैं क्या बताऊं बहराम मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है, अपने बाप की एक आधा बात मान लेता है, वो भी इस वजह से कि उनका एहतराम बाकी रहे, इस वजह से नहीं कि वो उनकी बात सुनना चाहता हो।
ठीक है आप ही मान जाएं और अपने घर लौट जाएं और जिंदगी गुजारें।
ये नहीं हो सकता हाजिया साहिबा, यानी अगर इसका इम्कान होता तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। अगर हो सके तो मेरे लिए कोई काम ढूंढ दीजिए।
बहराम साहब ने हमें कम नहीं सताया है, फरूख साहिबा के बारे में वो कमेटी की छत हमारे सर पर गिराना चाहते थे। आप तो यूं भी उनकी बीवी हैं।
बहराम एक दाना भी इधर से उधर नहीं करता है मेरे और मेरे बच्चों के लिए। मैं अदालत भी गई थी लेकिन जब तक मेरे केस की समाप्त होगी उस वक्त तक मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मैं अब थक चुकी हूँ और अपने वालिदैन से भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ।
आप तो बहराम को जानती हैं, उसका हमोगम उसके बाबा और अली है।
मैं जानती हूँ कि बहराम की वजह से आप मेरी मदद नहीं करना चाहेंगी लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कोई भी मसला पेश नहीं आएगा।
हमें काम करने वालों की तो बहुत ज़रूरत है, हम एक खैराती बाजार खोलना चाहते हैं। मैं शमसियान साहिबा से भी बात करूंगी, फिलहाल आप बाजार की तैयारियों में लग जाएं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक मिनट।
देखा हाँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि हाजिया साहिबा के पास से तुम मायूस नहीं लौटोगी। देखा
बिल्कुल।
मैं बात करूंगी शमसियान साहिबा से, इंशाल्लाह कल से काम शुरू करते हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।
एक मिनट देखूं किसका फोन। हेलो सलाम अलैकुम, क्या हुआ है?
तुमने मकसूदी के बारे में क्यों नहीं बताया?
नहीं बता सकी।
अरे यही तो सही मौका था, उन्होंने खुद ही दुकान की बात शुरू की थी।
मैं एकाएक तो छलांग नहीं लगा सकती ना, इस वक्त मकसूदी साहब ने हम पर एहसान किया है, एक गलत कदम से सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा।
अच्छा तमाम चीजों से तुम्हारी मुराद घर है?
अरे
एक घर की वजह से तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया है।
हाँ, इस वक्त नहीं।
पागल
तुम, क्या जानो तुम, बिल्कुल मैं खुद जानती हूँ कि कब राजपाश करना
है। अच्छा पता है तुम्हें।
घबराओ नहीं बेटी, मुझे ठीक से बताओ कि कौन आया है दरवाजे पर।
हम लोग बैठे थे कि घंटी बजने लगी, मैं दरवाजा खोलने गई तो मैंने देखा आईफोन में से कि कोई अजनबी आदमी खड़ा हुआ है। कहने लगा नाहिद से काम है, मैंने भी नाहिद को बुला लिया। नाहिद उसे देखते ही बिल्कुल घबरा गई और कहने लगी कि दरवाजा ना खोलना। उसके बाद उसका मोबाइल बजने लगा, अजनबी मर्द वहीं पर खड़ा हुआ था, पूछ रहा था नाहिद घर में है, मुझे पता है नाहिद घर में है। मजबूर होकर वो नीचे ली गई, उसे डर लग रहा था कहीं बेइज्जती न कर बैठे। उसने मुझसे कहा कि मैं किसी को भी ना बताऊं और मैं भी मान गई, लेकिन अब वो लोग गली में लड़ाई कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है उसके लिए हाजिया साहब, कहीं उसको कुछ परेशानी ना हो जाए।
सब ठीक है समीरा बेटी, घबराने से कुछ नहीं होता बेटी। तुम पुलिस को फोन करो, मैं अभी फौरन खुद को पहुंचाती हूँ, ठीक है? शाबाश बेटी, अब मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। माफ करना फरूख,
कुछ हुआ है क्या?
मैं फिलहाल एक जगह जा रही हूँ, शमसिया साहिबा से भी फोन पर बात कर लूंगी, तुम्हें भी फोन करूंगी। फिलहाल खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? मेरी जान छोड़ दो।
मैं चाहता हूँ ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करो। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देती? मुझसे भागती क्यों हो?
क्योंकि मुझे पता फिर मेरी जान नहीं छोड़ोगे।
बुरा है जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, अगर तुम्हें छोड़ दिया होता तो आज तुम्हारी नानी तुम्हारी कब्र पर गिरिया कर रही होती। तुम्हारे दर्द शुरू हो गए थे तो किसने तुम्हारी मदद की? ये लोग कहाँ थे? इन लोगों के पास क्या है जो इनकी तारीफें करती जा रही हो और मुझसे भागती जा रही हो?
तुम मुझ पर किस चीज़ का एहसान धर रहे हो? मेरे बच्चा तुम्हारी वजह से तो मरा है, तुम मुझे उस वीराने में ले गई इसीलिए वो मर गया।
अगर नहीं ले जाता तो अब तुम भी अपने बच्चे के पास जा चुकी होती, थोड़ा सोचो तो जरा। ये किस लिए आए?
इंस्पेक्टर साहब, ये हमें परेशान कर रहे हैं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अस्सलाम वालेकुम अफसर साहब।
वालेकुम सलाम।
मैं अपनी मामूजाद बहन को देखने आया हूँ।
क्या ऐसे ही कह रहे हैं?
हाँ।
इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर ले जाएं।
जी जरूर, आओ चले।
क्यों उन लोगों को सता रहे थे?
मैं किसी को सता नहीं रहा हूँ, मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही थी, मैं घबरा गया था।
पुलिस क्यों बुलाई?
मैं डर रही थी कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मलिया साहब को भी फोन कर दिया मैंने।
मलिया साहब को?
हाँ, आ रही है।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कोई शिनाख्त कार्ड है?
जी है मेरे पास। हाँ हाँ, ये देखो, तस्वीर भी नहीं है बिल्कुल। ये लीजिए
जमाली साहब,
इसका फोटो पुराना है, मूंछों के साथ है।
सलाम वालेकुम जनाब, मैं नदाफ हूँ, इस घर की मालिक।
अलैकुम सलाम, आपने फोन किया था?
जी हाँ, हमारे हमसाये ने फोन किया था।
आप इन साहब को पहचानती हैं?
अफसोस के साथ कहती हूँ हाँ।
अफसर साहब, देखा मैंने सच कहा था?
क्या कहा था?
यही कि मैं आप लोगों को जानता हूँ।
मैं इन साहब से कोई आशनाई नहीं रखती, सिर्फ एक बार उन्हें देखा है।
इंस्पेक्टर साहब, ये मोहतरमा मजलिसें पढ़ती हैं, अल्फाज से खेलना खूब जानती हैं। हाजिया साहब, मुझे देखा है यानी मुझे पहचानती है?
ये साहब इस लड़की के फूफीजाद भाई हैं, जो कुछ दिनों से मेरे साथ रह रही है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
जी मैं उन्हें देख चुका हूँ।
जी हाँ, इन्हीं साहब की वजह से वो अस्पताल ले जाई गई थी। अब ये करीमी साहिबा पर है कि अगर वो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हैं या नहीं।
यानी आप इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती?
इंस्पेक्टर साहब, ये साहब दूसरी मरतबा हमारे घर पर आकर शोर मचा रहे हैं, आपको और आपके साथियों को भी जहमत दे रहे हैं। अगर तीसरी मरतबा इन्होंने परेशान किया तो जरूर आकर रिपोर्ट लिखवाऊंगी।
कैसी रिपोर्ट? आप ही के मियां ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है और आप ही रिपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है।
अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे मरहूम मियां का तुम्हारी जिंदगी से क्या वास्ता है जनाब?
क्या वास्ता था? मेरी साबिक बीवी से शादी कर ली, मेरी जिंदगी तबाह कर दी।
क्या कहना चाहते हो तुम?
बात क्या है जनाब?
कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, घर की बात है, हम लोग खुद ही हल कर लेंगे, ठीक है?
आप एक मिनट चुप रहे, आप इस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगी?
नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई मुश्किल पेश आई तो मैं खुद आपको फोन करूंगी।
ठीक है, आप इनको दोबारा परेशान नहीं करेंगे।
सर आंखों पर, ये मेरी मामूजात का पीछा छोड़ दे, मुझे इनसे कोई काम नहीं है।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज इंस्पेक्टर साहब। तुम इस औरत का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुमने पुलिस इंस्पेक्टर को क्या अलग टप बातें बताई हैं? मैं तुमसे कह रही हूं, सुनो।
नाहिद इससे पहले कि आपके मियां से शादी करे मेरी बीवी थी। मैं उसे चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में लौट आए, यही बस।
तुमने तो मुझसे कहा था कि फूफीजाद भाई है।
मैंने झूठ नहीं कहा।
तुम्हारी जान पहचान मुर्तजा से कैसे हुई?
उसने कहा हमारी शादी शुरू से ही गलत थी, कसम से मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। परेशान ना हो, तुम्हारा राज मेरे पास रहेगा।
कहो कि मुझे नहीं चाहती, कहो कि मैं जाके मर जाऊं।
मैं तुम्हें नहीं चाहती, जाओ मर जाओ।
तुमने बहुत कुछ छुपाया है, अब हमारे दरमियान एहतराम बाकी रहने दो।
देखा किस मुसीबत में मुझे डाल दिया है।
यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बताना जरूरी है।
मैं जो कुछ भी आपको बताती परेशानी का बाइस बनता, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी।
कहो मान गई था कि तुम्हारे लिए हारन बजाऊं। कितनी तुम्हारे सामने इल्तिजाए की, तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतें उठाई।
मुझे यही ख्याल आ रहा था कि कोई खुशखबरी आने वाली है।
फिर मुर्तजा की सारी जायदाद और मीरास किसको मिलेगी? हाँ करम को, समझे?